ओम शांति आदि मध्य कदम बढ़ाओ तो प्रभु कहाँ पहुँचा देंगे, मंजिल पर पहुँचा देंगे। सारे बोझ उठाने के लिए आया हुआ है तो हमारा भी बोझ उठा लेंगे। इस ब्राह्मण जीवन में जितने भी हमारे पास्ट के बोझ थे बाबा ने सारे ले लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसे संस्कार होते हैं जो हम पुराने बोझ को लेकर चलते रहते हैं, इसलिए फिर हल्के नहीं हो पाते हैं। चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। आज की मुरली में स्लोगन दिया ना बाबा ने एक, ये चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है, अर्थात हमारी अपने मन पर कमांड नहीं है, नियंत्रण नहीं है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। बाबा ने तो जन्मते हम सबको अपनी सारी शक्तियां दे दी, सारे खजाने दे दिए, सारे गुण दे दिए, लेकिन हम उसका समय पर कितना उपयोग करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, सारा साल पढ़ाई पढ़ते हैं, एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम के समय भी वही बच्चे पास होते हैं जिनको क्वेश्चन के मेथड का पता होता है। अगर मेथड का पता नहीं है तो रह जाते हैं वो। उसी तरह से इस कर्म क्षेत्र पर अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन उन सबका सामना करने के लिए या उनसे पार जाने के लिए अगर समय पर ये ज्ञान के जो अनेका अनेक बिंदु हैं, अनेका अनेक तरीके हैं जो बाबा ने विधियाँ बताई हैं, अगर वो समय पर स्मृति में आता है तो हम सहज रूप से पार हो जाते हैं। फिर वो विघ्न हमारे लिए विघ्न नहीं लगते हैं, वो एक खेल की तरह अनुभव होते हैं। जिस बच्चे को सारे मेथड का पता होता है तो वो फटाफट हल कर लेता है, उस किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जिसको पता नहीं होता है वो सोचता रहेगा सोचता रहेगा सोचता रहेगा। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ये। अनेका अनेक जो पढ़ाई के कायदे हैं, नियम हैं, वो नियम अगर हमें अच्छी तरह से मालूम है और उन नियमों पर हम अच्छी तरह से चलते हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, अभिन्न अंग बन गए हैं, तो फिर समय पर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही समय पर स्मृति में आएगा और अपने आप ही हम समस्याओं का सामना कर सकेंगे, फेस कर सकेंगे। तो आज दो मुरलियां हैं, कौन कौन सी हैं? कर्मातीत तिथि की निशानियां और दूसरी देल तक तनशीन और विश्व राज्य तख्त निशीन बनना है तो क्या करो, एडिंग में था ना, सुख दो सुख लो। तो एक तो मुरली में पुण्य के ऊपर प्रकाश बाबा ने हम सबके आगे डाला और दूसरा कर्मातीत। तो इस जीवन में पुण्य कर्मों का बहुत बड़ा महत्व है, दान और पुण्य दो चीज़ें हैं। पुण्य कर्म हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारी दुआएँ हमारे जीवन में एकत्रित होती रहती हैं, दुआओं का खाता जमा होता रहता है और समय आने पर वो दुआएं हमें बहुत प्रकार के विघ्नों से पार कर देती हैं। और पुण्य जब वो गुप्त होता है, जैसे बाबा ने बोला ना आज कि दान तो दिखाई देता है ना, कहीं दान करते हैं तो कहीं लिखवा देते हैं, लेकिन पुण्य गुप्त है। जैसे एक बार एक दंपत्ति एक महानगर किसी शहर से घूमने फिरने के लिए गए कहीं हिल स्टेशन पर जहाँ बहुत हरी भरी वादियाँ थी, तो बहुत लंबा सफ़र था। रास्ते में जाते गए जाते गए जाते गए, शाम ढलने को आ गई। अब वहाँ से जो उनका मंजिल थी दूर थी, तो एक जगह रुक गए। वहाँ एक छोटी सी दुकान थी, घास फूस वाली झोपड़ी थी, रुक गए वहाँ। तो वहाँ एक बुढ़िया माता बैठी हुई थी, तो माता जी को उन्होंने कहा कि माता जी आप हमको चाय पिला दो, और साथ में उन्होंने जो बेफर्स जो चिप्स वगैरह होते हैं वो थे वो भी खाए, और चाय बनाने के लिए वो माता जी अंदर में चले गए। तो चाय बनाने में थोड़ी देरी होगी, तो तब तक वो जो दंपत्ति थे दोनों डॉक्टर थे, तो सोचा कि इतनी देर क्यों लगा दी है। तो जो डॉक्टर था उसको थोड़ा अंदर में मन में बहुत ख्याल चलने लगे, वो माता जी के प्रति एक घृणा जैसे होने लगी। तो थोड़ी देर में वो माता जी चाय लेकर आती है। तो उसको पूछा, आपने इतनी देर क्यों लगा दी? तो बोला, बेटा मैं तुलसी और पुदीना लेने के लिए गई थी ताकि आपको अच्छी चाय पिला सकूं। तो जैसे उन्होंने चाय पी तो जिंदगी में शायद उन्होंने ऐसी पहली बार चाय पी होगी, इतनी स्वादिष्ट थी। तो जब पैसे देने की बारी आई तो उन्होंने 100 रुपया दिया और माता जी ने केवल 20 रुपये काटे उसमें से, जबकि वो 20 रुपये केवल वो चिप्स गई थे, चाय के पैसे नहीं लिए। तो डॉक्टर ने पूछा, माता जी आपने चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? बोला, बेटा चाय का तो मैं काम ही नहीं करती हूँ, मेरा काम ये चिप्स बेचने का है केवल। ये तो आप अतिथि आए हैं हमारे पास, इसलिए आपको हमने चाय पिला दी है, चाय का कोई पैसा नहीं है। तो बोला, अच्छा तो चाय बनाने में इतनी देर क्यों लगा दी? तो बोला, एक तो घर में दूध नहीं था, बच्चे के लिए दूध थोड़ा सा बचा हुआ था, उसी चाय की हमने दूध बना, उसी दूध की आपको चाय बना दी, और पुदीना और तुलसी के लिए चली गई तो इसलिए देर लगी। तो डॉक्टर के मन में आ गया कि कैसे शहर की संस्कृति और गांव की संस्कृति कितना फर्क है, उसमें कितना डिफरेंस आ गया है कि एक बच्चे का दूध हमको चाय के लिए दे दिया। तो डॉक्टर कहता है कि आप फिर बच्चे को क्या पिलाएंगे? बोला, बच्चा एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मर थोड़ा नहीं जाएगा, आप कोई बार बार थोड़ा नहीं आएंगे। तो देखा माता की इतनी ऊंची भावनाएं हैं, और हम शहर में हम हॉस्पिटल चलाते हैं, हम तो लोगों को ठग रहे हैं, जैसे हम तो पैसा लोगों से खींच रहे हैं, और ये देखो गांव में बैठ के माता कितना पुण्य अर्जित कर रही है, उसने उसका पैसा नहीं लिया। तो फिर वो डॉक्टर फिर जैसे उनके अंदर में जाता है तो बोला, जो दूध खत्म हो गया तो बच्चे को दूध क्या पिलाएंगे? बोला, कल दूध ले आएंगे, आज मेरा घर वाला बीमार था तो आज नहीं वो शहर जा सकता, कल जाएगा। तो बोला, क्या बीमारी है? देखता हूँ तो अंदर देखा उसको बहुत बुखार आया हुआ है, बहुत कमजोरी है। तो डॉक्टर के पास थोड़ी दवाइयाँ तो दी थी, वो दी लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, उसको कुछ ग्लूकोज की आवश्यकता थी। तो डॉक्टर ने वहीं से अपनी गाड़ी ली और शहर में गया नज़दीक में, वहाँ से ग्लूकोज लाया और उसका ट्रीटमेंट किया वहीं, और ट्रीटमेंट करने के बाद वो वापस चले गए। लेकिन एक नया पाठ पढ़ा कि पुण्य क्या चीज़ होती है। वो जो पुण्य वो गुप्त था, प्राचीन काल में हमें भी याद है जो गांव की संस्कृति थी, अतिथि देवो भव, वो प्रैक्टिकल में हुआ करते थे। अगर रात को कोई व्यक्ति जाता था, सड़क से गुजरता था, गांव दूर है उसका, तो गांव वाले के घरों में वो व्यक्ति रुक जाता था और उसको पूरा अतिथि के समान समझा जाता था। बकायदा हमारे सामने की बातें हैं ये, गर्म पानी करके उसके पांव धुलाई किए जाते थे, ऐसे अतिथि का सत्कार किया जाता था। तो वास्तव में वो है पुण्य, जो बाबा ने कहा समय पर आवश्यकता के अनुसार किसी की मदद करना, सहयोग करना, इसको कहा जाता पुण्य, जिसको हम जानते नहीं हैं और थोड़ा सा भी हमने उसको सहयोग कर दिया वो है वास्तविक पुण्य। और उस पुण्य से हमको क्या क्या मिलता है, बहुत सारी बातें बाबा ने 5-6 निशानियां बताई, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे विघ्न अपने आप खत्म हो जाते हैं, उससे दूसरे लोग बहुत सीखते हैं। तो हम सब वो पुण्य आत्माएं हैं जो दूसरों के जीवन को परिवर्तन करने वाली हैं। और पुण्य करने से क्या क्या प्राप्त होता है आज की मुरली के अनुसार, हर्षित मुख रहता चेहरा, खुशी, प्रत्यक्ष फल, संतुष्टता और खुशी, और दुआएं मिलती हैं, समय पर दुआएं वो काम करेंगी। और क्या मिलता है, जो पुण्य कर्म करने वाले होते हैं वो अभिमान व अपमान से परे रहते हैं, वो जैसे बेफिक्र वाशाएं हैं, बेप्रवाह वाशाएं हैं। और क्या होता है पुण्य आत्माओं के लक्षण, अनेक व्यक्ति से दुआएं प्राप्त होंगी, और क्या होगा पुण्य आत्माओं का, संतुष्टता के भाव होंगे, और प्रसन्नता भी होगी, संतुष्टता भी होगी, और क्या होगा भरपूर होंगे, हाँ प्रत्यक्ष फल जो वो चेहरे से भरपूर दिखाई देंगे, प्राप्तियां जो गुप्त प्राप्तियां उनका वो गुप्त नशा होगा उनको। तो हमें अपने जीवन में देखना है कि हम कितने पुण्य अर्जित कर रहे हैं। तो आज जो पहली मुरली थी वो थी कर्मातीत स्थिति की निशानियां। तो हमारा जीवन जो वास्तव में कर्म प्रधान है, बिना कर्म किए तो हम रह नहीं सकते, इसलिए इस जीवन में हर कर्म करते हुए हमको कर्मातीत स्थिति की तरफ हमारी गति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए वो हमको स्वयं ही जांच करनी है। बाबा ने कहा ना, कर्मातीत स्थिति के समीप तो जा रहे हैं, कर्म भी वृद्धि को पा रहे हैं अर्थात सेवाएं वृद्धि को पा रही हैं, लेकिन कर्म और रिजल्ट दो चीजें हैं। ये कर्म हमको कर्म बंधन के रूप में वो हमको स्पर्श ना करे, उनका वो खींचे नहीं, ना ही उनका परिणाम हमको बांधे। नहीं तो कई बार सफलता एक अगर हमको मिल गई तो बस हम अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। जैसे मम्मा एक बार गए थे सेवा में, वापस आए मधुबन में, तो पूछा या मम्मा वहाँ सेवा कैसी रही, तो मम्मा ने बोला सब ठीक रहा। नहीं तो क्या होता है, अगर पूछते हैं तो थोड़ी सी सेवा करते तो विस्तार कितना सुनाते हैं। तो सेवा का जो रिजल्ट है, परिणाम है, कर्म का परिणाम, वो भी हमको खींचे नहीं, नहीं तो उसी सफलता के बारे में हमारे संकल्प चलते रहते हैं और वो सफलता के पीछे बहुत सारी सूक्ष्म जो बाबा ने कहा पाप अंश के जर्म्स हुए हैं, जर्म्स के रूप में निकलते रहते हैं, तो वो हमको ही बांध कर रख देते हैं। स्थूल रूप सूक्ष्म रूप से मान सम्मान की इच्छा, प्रख्यात होने की इच्छा, वो इच्छाएं फिर हमको अच्छा नहीं बनने देती। और संगम को वरदान ही है, मान सम्मान जिसको जो संकल्प करेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। आज जिसको मान सम्मान का संकल्प है वो संगम पर ही पूरा मान सम्मान मिलता रहेगा, लेकिन फ्यूचर में नहीं मिलेगा। हाँ, मान सम्मान मिलेगा, लेकिन वो जो वास्तविक खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं होगी, वो आंतरिक प्रसन्नता नहीं होगी, वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं होगी, वो जीवन में जो एक निश्चिंत स्थिति की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होगी। इसलिए आज के वरदान में क्या था, क्या वरदान था, अच्छे संकल्प रूपी बीज क्या करते हैं, सिद्धि स्वरूप बना देते हैं, है ना। तो अच्छे संकल्प करेंगे तो सिद्धि तो मिलेगी मिलेगी। इसलिए क्या कहा जाता है भक्ति मार्ग में, सत्य भजन महाराज कहा जाता है, जो हम सोचेंगे वो तो निश्चित रूप से होना ही है। वो अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। इसलिए संकल्प रूपी बीज हमको देख कर बोने हैं कि हम अपने इस बुद्धि रूपी मन रूपी धरनी में कौन से संकल्पों के बीज बो रहे हैं, और वो बीज तो फलीभूत होंगे क्योंकि संकल्प हमारी रचना है। एक बार वो रचना पैदा कर दी, उसकी पालना तो करनी पड़ेगी, चाहे वो कैसी है, चाहे वो व्यर्थ संकल्प है, कमजोर संकल्प है, नेगेटिव संकल्प है, पॉजिटिव संकल्प है। वो जो हमने एक बार संकल्प क्रिएट कर दिया उसके बारे में सारा दिन तो उसका विस्तार होता ही रहता है सूक्ष्म रूप से। तो हमको सोच समझ करके सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं, सोच समझ कर बोलना है क्या बोल रहे हैं। तो कदम कदम पर बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पथ साधारण पथ नहीं है, ये अंतिम पथ है, ये इस संसार की साधनाओं का तपस्या का सबसे अंतिम पथ है ये, जिस पथ पर हम ये अपनी यात्रा तय कर रहे हैं। और ये पथ संसार की सभी यात्राओं से अलग है, ये टोटली अलग है। यहाँ संसार की तरह विधि विधान नहीं है, संसार की परंपराएं रीति रस्म नहीं है, टोटली अलग है। संकल्प बोल कर्म समान संपर्क सारा अलग डिफरेंट है टोटल। तो बाबा ने कहा कर्मातीत स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं तो कर्म और कर्म के रिजल्ट से वो हमको स्पर्श ना करे। एक है कर्म, कर्म का बंधन, दूसरा है कर्म का संबंध। बंधन दुखदायी है और संबंध में सुख है। अगर उस कर्म को हम निमित्त समझकर करते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ऐसे फील होगा कर्मातीत स्थिति के अगर नजदीक जाते जा रहे हैं कि जैसे हमने वो किया ही नहीं है। कितनी डिटैचमेंट की अवस्था है कि कर्म तो किया है लेकिन जैसे कोई दूसरा कर गया। तो इस शरीर से उन महावाक्यों में इस शरीर से डिटैच होने की कितनी एक झलक दिखाई दे रही है कि कितना अपने इस बॉडी से भी डिटैच होकर हम कर्म में कर्म को मूर्त रूप दें, कर्म में हमारा खिंचाव ना हो, खिंचावट ना हो, वो भारीपन नहीं होना चाहिए। तो कर्म जो हमारे कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, सुखदायी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, बांधने वाले नहीं होने चाहिए, खिंचावट वाले नहीं होने चाहिए, भारी करने वाले नहीं होने चाहिए। और वो तब होगा जब, कब होगा मुरली में तो बताया ना जी, कब होगा, शरीर से डिटैच होंगे, एक बाप को अपना साथी बनाएंगे और जब बैकबोन हमको स्मृति में रहेगा, दादियों से मुलाकात निमित्त भाव से, कि कराने वाला तो कुकरा रहा है लेकिन हम निमित्त है, तो ये प्रैक्टिकल में हमारे पूर्वजों में सारे चरित्र दिखाई देते थे, तो वो जो दिखाई देते थे वो अभी किसके में दिखाई देने चाहिए? पूर्वज किसके हैं? हमारे पूर्वज हैं। तो हम क्या करेंगे? वो जो पूर्वज करके गए तो एकदम कर्म के प्रभाव में नहीं आना हमको। कोई भी हमको सेवा मिले, वो सेवा जैसे बंधन हमने, ये सेवा का बंधन तो सारे बंधनों को तोड़ने वाला बंधन है। बाबा ने कहा ना, अपने को ईश्वर सेवा के बंधन में बांध लो, सारे संसार के बाकी सारे बंधन टूट जाएंगे। सेवाओं के बंधन हमारे लौकिक बंधनों को पूरा करेंगे, हमारे जो नेगेटिव संकल्पों के जो बंधन हैं वो खत्म हो जाएंगे, हमारी जो नेगेटिव वृत्ति है जो बांध के रखी है जंजीरों के रूप में वो खत्म हो जाएगी। तो हमको देखना है कि हम कर्म करते कितने डिटैच हैं। एग्जाम्पल दिया जैसे ब्रह्मा बाबा, प्रैक्टिकल में मुहूर्त सामने उदाहरण मूर्त है। कर्म तो संसार वाले भी करते हैं लेकिन उनके कर्म करने का तरीका और हमारा कर्म करने का तरीका कैसा है? वो कर्म कैसे करते हैं? स्वार्थ भाव से। और हमारा कर्म कैसे है? निस्वार्थ भाव से। स्वार्थ तो हमारा भी है वैसे, कौन सा स्वार्थ है लेकिन हमारा है विश्वव्यापी, विश्व का कल्याण हो, हमारा हद का नहीं है। अगर हमारा पुरुषार्थ भी हो तो पुरुषार्थ भी केवल स्वयं प्रति नहीं, पूरे विश्व के प्रति हो, क्योंकि विश्व कल्याणकारी टाइटल जो बाबा ने हमको दिया है तो ऐसे थोड़ा नहीं दे दिया है। तो हमारा जो कर्म है वो है निस्वार्थ। हमारे कर्म करते स्थिति कैसी रहती है? संसार की आत्माओं की कर्म करते स्थिति कैसी रहती है? एग्जाम्पल दिया बाबा ने वहां कि ब्रह्मा वा सामने एग्जाम्पल है न्यारे प्यारे, और संसार की आत्माओं की स्थिति कैसे? अगर थोड़ा भी कर्म में ऊपर नीचे हो जाए तो कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा ने हम सबको हर कर्म में सफल होने की विधि बताई है कि कर्म करते कर्ण करावन हार की स्मृति रहे, निमित्त भाव रहे वो, और कर्म योगी बनकर करें। आज का स्लोगन क्या था? किसी को दुख नहीं देना है, दुख की लहर कहाँ चली जाए? दुख की लहर से डैश होना है तो डैश होकर कर्म करो, है? दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। तो हमारे कर्म कैसे हैं? कर्म करते हुए हमारा योग लगा रहता है, उस कर्म में परमात्म शक्ति समाई जाती है, उस कर्म में परमात्म प्यार समाया हुआ है, उस कर्म में परमात्म प्योरिटी समाई हुई है, उस कर्म में दूसरों को सुख देने की भावना समाई हुई है, उस कर्म में शुभ भावनाएं समाई हुई है। तो हमारे जो द्वारा जो कर्म बाबा जो करवाते हैं तो वो कर्म और संसार की आत्माओं के कर्म कितना डिफरेंस है दोनों में, तो कितना फर्क पड़ गया। तो बाबा ने हम सब के जीवन में जीवन को क्या से क्या बना दिया। तो ये थी दूसरी बात। और कर्मत स्थिति की निशानियां वो कैसे होंगे? हल्के होंगे। कितने हल्के होंगे? मन बुद्धि संस्कार से। मन से कैसे हल्के होंगे? मन में जो भी संकल्प चलेगा वो भारी नहीं करेगा मन को, नहीं तो क्या कई बार होता है योग में या कभी संकल्प ही नहीं आता, मन भारी भारी रहता है, अर्थात कर्म का अभी भी बोझ है। संकल्प करते हमारा मन हल्का हो जाए एकदम। दूसरा, बुद्धि यथार्थ निर्णय करे, बुद्धि हल्का निर्णय करते भी हल्का रहे वो, संस्कार भी हमारे हल्के होते जाएं, वो भी खींचा ताल वाले नहीं हो। ऐसा नहीं हम संगठन में रह रहे हैं तो संस्कार की टक्कर हो रही है, भारीपन हम खुद भी हो रहे हैं, दूसरों को भी कर रहे हैं, संस्कारों से भी हल्के, कर्म से भी हल्के, मन और बुद्धि से भी हल्के। ऐसा नहीं बुद्धि जजमेंट कर रही है करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, उसी पशुपेश में हमारा टाइम वेस्ट चला जाता है। एक बार जो जजमेंट देनी है, अगर मन बुद्धि हमारे हल्के हैं तो फटाफट वो डिसीजन दे देंगे, जजमेंट कर लेंगे, निर्णय दे देंगे। तो मन बुद्धि और संस्कार ये तीनों हल्के हैं, और वास्तव में इन तीनों के आधार पर तो हमारे जीवन का पुरुषार्थ होता है। जितना हम मन को हल्का रखेंगे, अब गीत में क्या सुना हमने, सारे बोझ संसार के लेने वाला है तो क्या वो हमारे बोझ नहीं लेगा? तो अपने सारे बोझ उसको दे देने हैं, लेकिन कैसे देंगे? कोई स्थूल में तो है नहीं कि दे दिए बाबा बोझ, तो कैसे देंगे मन बुद्धि से, और कैसे देंगे? संकल्प तो अंदर में बैठे हुए सारे, अब वो ऐसे तो नहीं कि बाबा ऊपर से खींच लेगा सारे, वो तो अंदर में है ही है। तो अच्छे संकल्प भरने हैं उसमें, और अच्छे संकल्प कहाँ मिलेंगे? रोज चार पेज की मुरली आती है, वो बार बार रिवाइज करने हैं उसमें, ताकि जो नेगेटिव ऊर्जा ना, नेगेटिव अंदर में जो विचार है, व्यर्थ का किचड़ा है, जो पाप कर्म के जर्म्स हैं, वो अंदर सारे निकलते जाएं बाहर, उनको स्थान ही ना मिले। जैसे रिकॉर्डिंग पैसे पुराने जमाने में रिकॉर्डिंग कैसे करते थे, कैसेट को उसका स्विच दबाते थे पुराना रेज हो जाता, पुराने गाने खत्म हो जाते थे। तो उसी तरह से इस ज्ञान का भी चिंतन करना। बाबा क्यों कहते रोज बच्चे सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, क्योंकि बिना उसके हमारे जीवन की प्रगति संभव नहीं है। तो विचार सागर मंथन करना बहुत जरूरी है। और विचार सागर मंथन का पहला स्टेप है अधिक से अधिक मुरली को बुद्धि में बार बार रिवाइज करना। अकेले कहीं बैठे हो, अकेले वॉकिंग कर रहे हो, या कहीं आपस में जा रहे हो, बिना ज्ञान योग के हमारा टाइम नहीं व्यतीत होना चाहिए। अगर बिना ज्ञान योग के हम बातें कर रहे हैं तो मन बुद्धि के ऊपर और हम उसको बोझिल बनाते जा रहे हैं। पहले से बहुत सारे बोझ हैं और ऊपर से और बोझ रख दिया, और उस बोझ का परिणाम बाद में दुख, उदासी, बाबा की श्रीमत का पालन नहीं किया। तो जैसे हम अपने आप को ही ठग लेते हैं, अपने आप से धोखा कर देते हैं, अपने ऊपर रहम नहीं करते हैं। मुरली में बताया ना मम्मा के बारे में, क्या बताया आज की मुरली में मम्मा के बारे में क्या बताया था? हाँ, गाली करने में गले लगाते हैं और रहम, हाँ रहम की भावना। जैसे मम्मा का एग्जाम्पल, जैसे मम्मा जो अमृतसर में गई थी और लोग इतना बाहर से हंगामा करने के लिए आए और मम्मा छत पर बैठी हुई थी, तो उनके प्रति भी रहम। वो तो हंगामा करने गए थे, है ना, सेंटर को अस्त व्यस्त करने गए थे, लेकिन मम्मा ने बड़ी शांति से उनको मिला, मम्मा मिली और सब पर जैसे ज्ञान के फूल बरसाए। तो जैसे क्या हुआ, उनका परिवर्तन हो गया, रहम किया उनके ऊपर। तो हमें भी उसी तरीके से अपने ऊपर रहम करना है। अपने मन में ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प भर देने हैं, रोज अच्छे अच्छे संकल्पों की रचना करनी है, नहीं तो सारा दिन हमारा जो मन है वो इसी देह के इर्द गिर्द घूमता रहता है। बाबा ने बताया आगे जाकर समस्या आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, भारी कर देंगी, वो प्रकृति भी भारी करेगी और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियां भी भारी कर देंगी, और वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो प्रकृति के पांचों तत्वों भी भारी कर देंगे। तो ये जो सारा दिन जो मन हमारा इस प्रकृति के प्रति नहीं ज्यादा चिंतन चलते रहना चाहिए। ये संसार के पांच तत्वों के अंदर हम विचरण करते हैं, अगर इन्हीं पांच तत्वों के बारे में हम ज्यादा चिंतन करते तो छठे महातत्व पर कहां पहुंचेंगे, परमधाम में हमारा मन कैसे जाएगा, हल्के कैसे होंगे। ये पांच तत्व तो भारी हैं एकदम, हमारा चिंतन ही उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, इस देह के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, तो छठे महातत्वों की यात्रा कब करेंगे। और ये जो सारा ज्ञान है ये हम सबको इन पांच तत्वों से डिटैच करने के लिए, घर वापस ले जाने के लिए। ज्ञान कहां से आ रहा है, परमधाम से आ रहा है। तो जहां से ज्ञान आ रहा है वहां तो हमको पहुंचना पड़ेगा ना। अब जो हमको जिस स्थान का एड्रेस देता है तो नेचुरली अगर हम वो एड्रेस पता है हमको वहां जाना है तो हमारे कदम उसी तरफ जाएंगे ना। तो ये ज्ञान कहां से आ रहा है, परमधाम से आ रहा है। तो हमको जाना कहां है, परमधाम। लेकिन होता क्या, सारा दिन हम एड्रेस को भूल जाते हैं, उसको परमधाम की तरफ बुद्धि कहां रहती है। अगर सारे दिन हम विश्लेषण करें, अपने जांच करें सूक्ष्म रूप से, तो ऊपर हमारी बुद्धि कितना रहती है, कितना हम ऊपर का चिंतन करते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, घर को याद करो मुझे याद करो, घर को याद करो मुझे याद करो। कौन सा घर, परमधाम। तो वो कब याद होगा, जब उस घर के जब उस घर से जिस घर में रहने वाला जब इस धरा पर आता है और जो उस घर के बारे में बता रहा है, वो सारे बुद्धि में ज्ञान टपकते रहना चाहिए। और वो जो हमारा दूसरा घर है, दूसरा घर कौन सा है, सुखधाम, उसके बारे में चिंतन चलेगा। इसलिए जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे में परिवर्तन धीरे धीरे वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चेहरा क्या, दर्पण है। अब ये चेहरा कैसे हमारा दिन प्रतिदिन हर सेकंड हमारा चेहरा ना बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, हमारे विचारों से बदलता है। विचारों के आधार पर ही हमारे नए संस्कारों का निर्माण होता है। तो सारे दिन में कौन कौन से विचार हैं, और अधिकतर विचार संसार में तो ऐसा कहा जाता है अधिकतर बीमारियां हमारे विचारों से ही उत्पन्न होती हैं। तो हम सारे दिन में कौन कौन से विचार करते हैं जो नहीं करने चाहिए। अगर हम सारे दिन में देखें तो शाम को जांच करें तो अधिकतर विचार हमारे वही होते हैं जो करने की जरूरत ही नहीं है, और वो होता भी नहीं हमारे साथ। सोच लेते हैं हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, लेकिन वो शाम को तो होता ही नहीं, अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी हम सोचते रहते हैं क्योंकि आदत पड़ी है सोचने की। तो मन बुद्धि संस्कार ये हमारे तीनों हल्के होने चाहिए, नहीं तो बाबा कहते जो प्रकृति भी आगे भारी हो जाएगी, भारीपन हो जाएगा, मनुष्य आत्माओं की वृत्ति भारी होगी, हमारे अपने मन बुद्धि ही भारी बनते जाएंगे दिन प्रतिदिन अगर हम अपने पर अटेंशन नहीं रखेंगे तो। और इस समय बहुत कीमती है, किस गति से इसमें बदलता जा रहा है, संसार की परिस्थिति देख रहे हैं। अगर हम संसार की तरफ नजर दौड़ाएं तो हर व्यक्ति थोड़े बहुत डिप्रेशन में तो है ही है, छोटे बच्चे से लेकर सब डिप्रेशन में। इतनी प्रतिस्पर्धाएं हैं, इतने संसार में चकाचौंध है, आपस में खींचातान है, संबंधों में दूरियां बढ़ रही हैं, वो मिठास नहीं है, स्वार्थ भावनाएं हैं। कल परसों मुरली में था ना, बच्चा सोचता है कब बाप मरे तो मैं प्रॉपर्टी का हकदार बन जाऊं। आजकल तो ऐसे समाचार है तो छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे बच्चों को मार देते हैं। कैसी वृत्ति होगी मनुष्य की, 7 साल के बच्चे ने 14 साल के बच्चे को मार दिया, उसको आग लगा दी सीधी। एक बच्चे, 3 बच्चे थे घर में, रोज पिता उनका मुर्गा काटता था, तो छोटे छोटे बच्चे थे सोचते तो ये मुर्गा बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि वो तो तड़प रहा था, और बच्चे सोचते बड़ा खुश होता है। तो पिता गया घर से, चला गया बाहर, तो बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को पकड़ा और चाकू रख दिया उसके गर्दन के ऊपर। सोचा ये भी बड़ा खुश होगा, वो तो खून से लथपथ हो गया। उधर से माँ आई तो माँ ने देखा तो काट दिया, तो जिसने काटा उसने स्लांग मारी, वो भी मर गया और वो भी मर गया। कैसा हाल हो गया देखो कैसा। इसलिए बाबा के कहते जो कर्म हम करेंगे हमको देकर दूसरे करेंगे, और तो अब तो बात उससे भी आगे बढ़ गई है, जो संकल्प हम करेंगे हमको देकर दूसरे करेंगे उसके भी आगे बढ़ गई है, जो स्वप्न हमको आएंगे वही स्वप्न दूसरों को आएंगे, और स्वप्न का आधार है हमारा साकार जीवन, सारी दिन की दिनचर्या। तो कर्मातीत स्थिति की तरफ हम कितना बढ़ रहे हैं, तो कर्म करते हमको बीच बीच में अभ्यास करना है शरीर से डिटैच होने का, और कर्म जब भी हम करते हैं तो सारा उसका परिणाम बाबा को सौंप देना, फिर उसके बारे में ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसकी लंबे समय पर चर्चा करने की जरूरत है। हाँ, अनुभव की हम लेन देन कर सकते हैं, लेकिन उस कर्म के बारे में विस्तार, जैसे हम छोटा सा कर्म करते हैं तो अपने स्टेटस पर फोटो डाल देते हैं, वो वहीं नष्ट हो जाता है। एक है दूसरों को सिखाने की भावना से, लेकिन एक है वहां मान सम्मान की इच्छा है, अगर थोड़ी सी भी इच्छा है तो सारे कर्म का परिणाम वहीं का वहीं हो जाएगा पूरा। तो स्वयं को देखना है कि वो कर्म, पुण्य कर्म हम कितना कर रहे हैं। तो ये थी कर्मातीत स्थिति की तरफ जाने के लिए हमको जीवन में कितना अटेंशन रखने की जरूरत है। दूसरी मुरली थी दिल तख्त नशीन और बिशप तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो सुख लो। तो हम सब कौन है, बाबा ने कहा तुमको डबल नशा है, कौन कौन सा, एक ये एक वो, कौन कौन सा, सुख देना लेना तो बाद में। हाँ, हम ईश्वर के बालक हैं, एक ये नशा है, और दूसरा विश्व के मालिक हैं, और किस और दूसरे किसके मालिक हैं, साथ में स्वराज्य स्वयं की कर्मेंद्रियों के मालिक हैं, और ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है स्वयं के मालिक बनकर रहना। दूसरों के मालिक बनना आसान है, वो तो बार बार से हम किसी को ऑर्डर करेंगे वो तो बन सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वयं का मालिक बनकर रहना स्वराज्य अधिकारी की स्थिति। कोई भी कर्मेंद्रिय हमारे नियंत्रण में रहे, हमारे नियंत्रण से बाहर ना जाए, हम कर्मेंद्रियों के परवश ना हो जाए, बल्कि सारे कर्मेंद्रियां हमारे वश में रहे। तो देखना है कि इन आंखों के ऊपर जितने भी हमको कर्मेंद्रियां मिली हैं इनके ऊपर मेरा कितना कंट्रोल है, और ये सहज काम नहीं है। सुनने सुनाने में बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर जो काम करना उसमें मेहनत है। इसलिए बाबा कहते मासी का घर नहीं है, लंबे समय से कर्मेंद्रियां देव अभिमान वश अनेक विकर्म करके बैठी हुई हैं, अब उनको हम ये कर रहे हैं। ये तो वैसे हो गया जैसे एक बंदर था, बंदर कितना चंचल होता है ना, और ऊपर से उसने शराब पी ली, कितना चंचल हो गया, और ऊपर से उसके अंदर 3-4 आत्माएं घुस गई, वो स्थिति हमारे मन की होती है। तो ये सहज काम थोड़ा नहीं है, और इस काम को पूरा करने के लिए बाबा ने हम सबको योग्य समझा। तो वो हमारे में सामर्थ्य है, वो हमारे में ताकत है, लेकिन उसको स्मृति में बार बार उसको स्मृति दिलानी पड़ेगी हमें अपने आप को। तो मन को कंट्रोल करने के लिए बाबा ने कहा डबल नशे में रहना है, कि हम ईश्वर की संतान है, उसने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो उसने हाथ पकड़ा है, उसका वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, तो क्यों नहीं हम स्वराज्य अधिकारी बन करेंगे। उसने हमको ताकत दे दी है, हमारी सारी कर्मेंद्रियों को शीतल बना दिया है, उसकी दृष्टि पड़ते ही हमारी जैसे सारी कर्मेंद्रियां एकदम प्योर होगी, पवित्र होगी। ये सामान्य जीवन नहीं है, अभी उसकी दृष्टि पड़ी है, हमारे तन पर भी उसकी दृष्टि पड़ी है, हमारे मन के ऊपर, हमारी आंखों के ऊपर दृष्टि पड़ी है, लेकिन उसको बार बार स्मृति दिलानी पड़ी हमें अपने आप को कि उसकी दृष्टि हमारी आंखों में निरंतर घूम रही है, उसका वरदानी हाथ निरंतर मेरे सिर पर है, क्योंकि 1 सेकंड भी अगर चूके तो दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। स्थूल दुर्घटना तो हो जाती है, लेकिन सूक्ष्म दुर्घटनाएं और भी खतरनाक होती हैं। थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव संकल्प आ गया, दृष्टिवृत्ति खराब होगी, तो अंदर में कितना गिल्ट कॉन्शियस पैदा होती है। हमें दुख कब होता है कि स्वराज्य अधिकार हमको बाबा ने दे दिया कि तुम बच्चे स्वराज्य अधिकारी हो, और सारा दिन में हम कर्म अच्छा भी कर रहे हैं, अपने ऊपर भी ध्यान रखा, कर्मेंद्रियों को भी नियंत्रण में रखा, लेकिन थोड़ी सी सावधानी हमने हटी और थोड़ा सा भी हमारे से गलत कर्म हो गया तो वहीं से दुख चालू हो जाता है। और हम बाद में सोचते हैं कि ये सावधानी हम रख भी सकते थे, हमने रखी नहीं, और फिर और दुख चालू हो जाएगा। तो स्वराज्य अधिकारी की सीट पर रहना है तो डबल नशा कौन सा, कि हम ईश्वर की संतान है, भगवान के बच्चे हैं, साधारण थोड़े नहीं है। उसने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, उसने हमारे जीवन की जिम्मेवारी ली हुई है, उसने हमारे जीवन को नया पार, जीवन की नया को पार लगाने का ठेका लिया हुआ है। तो जब भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो और क्या कोई करेगा। तो निरंतर स्मृति में रहना है कि उसकी छत्रछाया के नीचे मैं चल रहा हूं, उसने मेरा हाथ पकड़ा है, वो मेरी आंखों में समाया हुआ है, कदम कदम वो हमारे जैसे हमारे लिए हर कदम पर हमको वो श्रीमत दे रहा है। तो स्मृति रखनी है हमको। और दूसरा नशा कि हम स्वराज्य अधिकारी हैं, विश्व के मालिक हैं। विश्व के मालिक बनने से भी ज्यादा खुशी स्वयं के ऊपर, स्वयं का मालिक बनने की खुशी ज्यादा है, क्योंकि ये तो अभी प्रैक्टिकल में दिखाई दे रही है। विश्व तो आगे दिखाई देगा, बाद में वो पता नहीं कब दिखाई देगा, लेकिन अभी तो ये प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई दे रहा ना कि ये जो पूरा संसार है, इस पर हमारा पूरा आधिपत्य है, पूरा कंट्रोल है, पूरा शासन है इसके ऊपर। और जितना इस पर सफल शासन करेंगे उतनी ज्यादा खुशी होगी। तो डबल नशा, और इस डबल नशे के बाबा क्या कहते हैं, गीत गाते रहो, बा मेरा श्रेष्ठ भाग्य, बारे में खुश नसीब आत्मा। और उसकी तीन बातें बताई, कौन कौन सी, जो खुश नसीब आत्मा है वो क्या करेंगी, आज की मुरली में था, खुशी के झूले में झूलती रहेंगी, और दूसरी बात खुशी की खुराक खाती रहेंगी, और तीसरी बात खुशी का महादान करते रहेंगे। तो हम बहुत खुश नसीब आत्मा है, खुशी राम है, खुशी के देवता हैं। तो निरंतर हमको स्मृति रखना है, खुशियों की खान हमारे सामने है, खुशियों का दाता हमको मिल चुका हुआ है। तो निरंतर हमको स्मृति में रहना है, तो डबल नशे में रहना है, नशा और खुशी, ये हमको छोड़नी नहीं है, और रोज हमको इसकी स्मृति बार बार दिलानी है। इसलिए जब भी हमें उदासी आती, क्यों उदासी आती है, क्योंकि हम विस्मृत हो जाते हैं, अंधकार हो जाते हैं जीवन में, लाइट नहीं होते। पिछले मुरली बाबा ने क्या कहा, लाइटनेस, तुम्हारी लाइटनेस से ही आने वाली आत्माओं का भारीपन समाप्त हो जाएगा। तो लंबे समय से अगर हम लाइट रहते वो हमारी स्थिति लाइट रहती है। अगर सोचेंगे अंत में रहेंगे, तो अंत में अगर पहले से प्रैक्टिस किया तो अंत में दूसरों को हल्का कैसे बनाएंगे, क्योंकि जिंदगी भर तो उन्होंने हमको भी भारीपन स्थिति में देखा, हल्का तो देखा नहीं, जिंदगी भर उन्होंने हमको खुश देखा ही नहीं, तो अंत में भी खुशी कैसे देखेंगे। अगर अंत में हम खुश होंगे तो बोलेंगे आर्टिफिशियल खुशी है इनकी, क्योंकि जिंदगी भर तो हम खुश हुए ही नहीं। तो निरंतर खुशी रहनी चाहिए, आर्टिफिशियल खुशी नहीं, निरंतर खुशी। तो वो कब होगी, जब बाबा की आज्ञाओं पर, उसकी शिक्षाओं पर पूरा उसका अनुसरण करते रहे, जितना हम पूरे मनोयोग से, सच्चे दिल से, सच्चाई सफाई से, पुरुषार्थ के प्रति हमारी सच्चाई सफाई होनी चाहिए अपने लिए, पूरे मनोयोग से, पूरे रहम दिल, अपने आप अपने ऊपर रहम करते हुए। और दूसरी बात, पुण्य आत्माओं के लक्षण, क्या बाबा ने बताया पुण्य आत्माओं के लक्षण, ये पुण्य का खाता जमा करने का समय है, और जिसका पुण्य का खाता जमा होगा उसकी व्यर्थ की समाप्ति हो जाएगी। अगर हमारे जीवन में भी व्यर्थ है तो हमारे पुण्य कर्म कम है, पुण्य कर्मों का खाता जो वजन है वो कम है। पुण्य कर्म अगर हैं जीवन में तो जीवन में प्रत्यक्ष फल उसका संतुष्टता और प्रसन्नता रहेगी, अभिमान और अपमान से परे रहेंगे। भले कोई कुछ भी कह रहा है लेकिन अभिमान अपमान, क्योंकि अपनी अपने मजे में बैठे हुए हैं, अपनी सीट पर सेट हैं, जो दाता ही हमारे हाथ में है वो हमारे साथ में है, तो फिर और फिक्र किस चीज़ की है, फिक्र की कोई बात ही नहीं है, बेफिक्र आशाएं, बेपरवाह आशाएं। तो भविष्य से भी ज़्यादा खुशी अभी की है, तो प्रसन्नता और संतुष्टता। और क्या पुण्य आत्माओं की निशानी, अभिमान और अपमान से परे। और पुण्य आत्माओं की निशानी, सहयोगी रहेंगे जी, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे, वो थोड़ा और आएगा हाँ। तो वो है, बाबा ने कहा तपस्या वर्ष में अपना संपूर्ण बनने का सभी ने लक्ष्य रखा है ना, और उस लक्ष्य रखा था, क्या लक्ष्य रखा है, सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। तो आधा स्लोगन तो ठीक है लेकिन आधे में गड़बड़ है। तो दुख तो हम देने की सोचते नहीं है, देते भी नहीं है, लेकिन तो लेके लेते, क्या कारण है उसका? बाबा ने कहा अपनी झोली सुख से भरो, लेकिन हम अपनी झोली झोली जैसे फैला के घूमते रहते, दुख दे दो दुख दे दो दुख दे दो, कैसा लगेगा? भगवान सवेरे हमारी झोली भर के सुख से भर के जाता है, लेकिन हम सारे दिन में ढूंढते हैं कौन दुख देने वाला है, कौन ढूंढ रहे हैं या उसके पीछे पड़े हुए हैं। बाबा ने सुखदेव बनाया और दुखदेव बन जाते हैं। दुखदेव तो नहीं कहेंगे, दुख का देवता तो नहीं कहेंगे दुखलेव दुख लेने वाले। तो दुख क्यों मिलता है हमको, क्या कारण है उसका? क्यों हम किसी की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दुख वाली बात को क्यों ले लेते हैं? क्योंकि सुख वाली बातों से मन अभी भी खाली है, सुखदाता से हमारा पूरा कनेक्शन अभी हुआ नहीं है, हमारा रिश्ता अभी वो डोर जीवन की अच्छी तरह से बंद ही नहीं है, कहीं ना कहीं ढीली है, या तो पिछला रिश्ता हमारा कहीं ना कहीं और जुड़ा हुआ अभी। जैसे किसी की शादी हो जाती है और शादी के बाद उसका ध्यान कहाँ रहता है? दोनों का आपस में एक दो प्रति रहता ना, अगर इधर उधर जाए तो क्या होगा, जीवन में कला क्लेश आ जाएगी। तो हमारी तो सगाई किसके साथ होगी? सगाई नहीं बल्कि शादी भी हो गई है। तो अगर ध्यान हमारा पुरानी दुनिया की तरफ जाता है तो पुरानी दुनिया तो सारी रावण की दुनिया है, और वो बीच में आ जाती तो क्या होगा, दुख होगा सुख होगा? फिर उस दुख से क्या होगा, मन में कौन से जर्म आएंगे? पाप के जर्म, किचड़ आएगा। तो किचड़े से क्या होगा, बीमारियां पैदा होंगी, और बीमारियां किसको तंग करेंगी, स्वयं को तंग करेंगी। काल की मुरली में था ना, अरे तुमको शर्म नहीं आती, बाबा याद नहीं रहता है, लौकिक पिता को तो भूलते नहीं हो तुम। उसका भी कारण क्या, क्योंकि लौकिक पिता दिखता ना, ये दिखता नहीं है, बात तो ये भी है ना लेकिन ये पिता का कितना इस जीवन में महत्व है, इसके प्रवेश करने से हमारा जीवन कैसे कैसा हो गया है? अगर उसका भी हम कंपेरिजन करें, क्या से क्या बन गए, कितने चेहरे सबके चमक गए अभी बिना पाउडर के ही। संसार में तो कितना वो पाउडर बिंदी और टिकलू बिल्कुल क्या लगाते रहते हैं, और यहाँ तो बाबा कहते संसार में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है? ब्राह्मण बच्चे सबसे ब्यूटीफुल है। कौन सी ब्यूटी है? प्योरिटी की ब्यूटी है। सबसे जो बड़ा श्रृंगार है प्योरिटी का श्रृंगार है, पवित्रता का श्रृंगार है, संतुष्टता का श्रृंगार है, खुशी का श्रृंगार है, प्रसन्नता का श्रृंगार है, वो सारे गुणों का श्रृंगार। तो जैसे बाबा ने हमको श्रृंगार दिया है, सारी विशेषताओं की खान जैसे जो हमारे अंदर थी सारी बाहर निकाल के रख दी, इसलिए चेहरे चमक रहे हैं सभी के। तो कितने ब्यूटीफुल है भगवान के बच्चे। तो हमको दुख लेने की आदत अगर छोड़नी है तो हमको जो जितने भी सुख की बातें हैं वो बुद्धि में रखनी है, स्मृति में रखनी है, कि कौन सी गुप्त प्राप्ति हुई है हमको, वो नशा रहना चाहिए, वो खुशी रहनी चाहिए। तो ये था कि ना दुख देना है ना दुख लेना है, सुख देना है और सुख लेना है। तो सुखी रहने के उपाय ढूंढने हैं, उसका अपना चिंतन करना कि कैसे मैं सुखी रह सकता हूं। अमृत वेले से रात्रि तक उस दिनचर्या पर रहेंगे तो मैं सुखी रहूंगा, मुरली के पॉइंट याद रखूंगा तो सुखी रहूंगा, ज्ञान योग में ठीक दिनचर्या में रहूंगा तो सुखी रहूंगा, कर्म क्षेत्र पर ठीक से सेवाएं करेंगे तो सुखी रहेंगे, और दूसरों को रास्ता बताएंगे तो सुखी रहेंगे, अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे तो सुखी रहेंगे, बाबा की छत्रछाया में रहेंगे तो सुखी रहेंगे, और कैसे सुखी रहेंगे, ऐसे लिस्ट बनानी अपने आप की, चिंतन करना, बुद्धि को खींचना एकदम। नहीं तो बाबा ने जो वरदान दिया दिव्य बुद्धि का वो काम ही नहीं करेगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। बाबा ने कहा खुशी बांटो, ज्ञान को बांटो और बढ़ाओ, ऐसे जितने भी खजाने हमको मिले हैं वो सब बांटने हैं। आपस में चर्चा करते हैं तो ज्ञान की चर्चा कीजिए। हम एक जगह कहीं गए थे तो देखा बुजुर्ग साहब भाई, वो अभी मधुबन में नहीं आ पाएंगे, लेकिन चेहरे पर इतनी खुशी ज्ञान के सिवाय उनके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकलता, वंडरफुल। ऐसे ऐसे भाई बहन दूर दूर गाँव में दूर दराज बैठे हुए हैं। तो बाबा के बच्चे आज बाबा ने बोला ना प्राइज देंगे, किसको देंगे? टीचर्स बहनों को, मधुबन वासियों को, और तीसरा गोल्ड स्टूडेंट जो बाहर में रहते हैं, तो देखेंगे कौन नंबर में आता है। तो प्रैक्टिकल में हमने देखा सचमुच जो बाहर में रहते हैं बहुत अच्छा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, वो भी इतना डेयरी मेंटेन करके रखी है सवेरे से लेकर रात्रि दिनचर्या की पूरी की, कब कब कौन कौन से सामान में रहना है, इसमें कितना समय रहे, इतना कितना समय रहे, कौन सी सेवाएं की, वो सारा प्रैक्टिकल में लिखा हुआ है। तो बाबा ने कहा टीचर्स और मधुबन वासियों को देकर लहर फैलती है वो, तो देखना है सुख के कौन कौन से ऐसे उपाय हैं, वो हमको खुद ही ढूंढने हैं। बाबा ने तो सारे बता दिए हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उन्हें भूल गए, उसको किनारे कर दिए, वो खजाने हमने किनारे रख दिए हुए हैं। तो सुख के उपाय, खुश रहने के उपाय, खुद का चिंतन करना उसमें। और क्या कहा बाबा ने मुरली में दादियों के साथ, क्या कहा? दादियां कौन है? महारथियों ने सबको शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया, ये पुण्य का काम किया है। तो दादियों की कितनी बड़ी ऐसी वृत्ति कि सबको शक्तिशाली बनाने का पुण्य का काम किया है। तो हम भी तो उसी फैमिली के हैं, उसी परिवार के हैं, तो हम दूसरों को शक्तिशाली बनाने के साथ पहले अपने आप को इतना शक्तिशाली बना दे कि हर बोल हमारा शक्तिशाली हो, हर बोल हिम्मत उमंग उत्साह वाला हो। मुरली में था ना, दूसरों को हिम्मत उमंग उत्साह दिलाया। तो महारथी अर्थात क्या, सबको देने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या, हिम्मत उमंग उत्साह देने वाले, सबको आगे बढ़ाने, सबको एक रस एकता के सूत्र में पिरोने वाले। मुरली में था ना, माला के मणके है ना, छोटी माला भी है और माला तो भी तैयार नहीं है, अभी क्या तैयार हुआ है, कंगन तैयार हुआ है, लेकिन माला भी धीरे धीरे तैयार हो रही है, अभी उसमें मार्जिन है। तो हम उसी माला के मणके हैं, तो हमें वो कर्म करना है जो जिससे ये संगठन इतना मजबूत रहे। कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिस कर्म से कहीं किसी के संकल्प चले, विचार चले, वायुमंडल खराब हो, वातावरण खराब हो। वातावरण को शक्तिशाली सबसे और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है, एक है हम स्थूल रूप से करते हैं, सबसे बड़ा पुण्य है बैठ के अच्छी साधना करना, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना सबसे बड़ा पुण्य है। और ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई किसी को बंधन नहीं है। इसमें चाहे कोई बीमार है, कोई चल नहीं पाता है, कैसा भी है, अमीर है, गरीब है, गोरा काला, कैसा भी हो, सब कर सकते हैं इसमें। केवल सोचना ही है, आज शाम का जो योग था कौन से सोमान के ऊपर था, सारा सार था, वो स्लोगन था वो कर्मयोगी बनकर। आज जो इंटरनेशनल योग था उस योग के लिए कौन सा सोमान दिया था सवेरे मुरली में, बहन जी ने सुनाया भी था ना, अपने आकारी रूप में फरिश्ता बनकर विषम में परिक्रमा लगाते हुए सबको लाइट माइट, प्रकृति के पांचों तत्वों सहित विषम की सर्व आत्माओं को लाइट माइट दो। तो एक ही संकल्प करना है कि मैं आकारी फरिश्ता हूँ, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, प्रकृति के पांचों तत्व मेरे सामने खड़े हैं और संसार की सभी आत्माएं खड़ी हैं और उनको दृष्टि दे रहे हैं, बाबा जैसे इन आंखों से दृष्टि दिला रहा है। इतना केवल संकल्प ही तो करना है, उसके परिणाम की इच्छा नहीं रखनी है। लेकिन होता क्या, हम परिणाम की इच्छा रखते हैं कि थोड़ी सी ना एक अच्छी अनुभूति हो जानी चाहिए, ये शरीर ना एकदम दूसरों को लाइट लाइट दिखना चाहिए, कोई एक तो कह दे कि ये शरीर लाइट दिखा दे रहा है, इच्छा रहती है अंदर से ऐसी, इसलिए हमारा पुरुषार्थ अच्छा नहीं हो पाता है। एक इच्छा रखने की जरूरत ही नहीं है, संकल्प ही तो करना केवल, बस बैठ के बाबा मेरे साथ में, मैं सूक्ष्म बॉडी में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि उसी उसकी श्रीमत पर बाबा ने जो कहा सूक्ष्म शरीर में बैठ जाओ, अपने आकारी फरिश्ते में बैठ जाओ, और अभी मैं और बाबा चले विश्व परिक्रमा करना और सारी आत्माएं दिखाई दे रही हैं, संसार के सभी आत्माओं के सिर पर हमने हाथ रखा हुआ है, जैसे बाबा ने पकड़कर हमारा हाथ उनके सिर पर रख दिया, भक्तों के सिर पर रख दिया, या प्रकृति के पांचों तत्वों के ऊपर रख दिया, या फिर संसार के जितने भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े जानवर उनके ऊपर भी रख दिया, क्योंकि हम पूरी विश्व के क्या हैं, आधार मूर्त है, उधार मूर्त है, वो भी तो प्रकृति के मित्र हैं ना, पर्यावरण संरक्षण के मित्र हैं वो जीव जंतु भी, तो हम पूरी सृष्टि के आधार मूर्त है, बीज रूप बाप के बच्चे मास्टर बीज रूप हैं, सारे संसार की उत्पत्ति कहाँ से है, मास्टर प्रकृति पति हैं, प्रकृति तुम्हारी रचना है। तो हम तो हमारे जो संकल्प हैं विश्वव्यापी संकल्प होने चाहिए, केवल स्वयं प्रति नहीं, थोड़े अपने घर के प्रति नहीं, समाज के प्रति नहीं, पूरे संसार के प्रति। नहीं तो अगर क्या होता है, अगर अपने प्रति रहते हैं या केवल घर के घर वालों के उनके कल्याण के प्रति रहते हैं तो सूक्ष्म से थोड़ा थोड़ा मोह पैदा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा उनके प्रति मोह की रगें जुड़ती जाती हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब वो ज्ञान में चलते हैं तो फिर धीरे धीरे मोह पैदा होता है, हाँ अभी ज्ञान में चल पड़े, सूक्ष्म से मोह पैदा हो जाता है वो। तो हमको सारी मुरली को रिवाइज करना है, और मुरली वाइब्रेशन के रूप में सारी हमारे अंदर समा जाए, बार बार पढ़नी है, और वो पढ़नी फिर पिछले संडे की, उसके पिछले संडे की, उसके पिछले संडे की, पिछले संडे की मुरली क्या थी, सर्वदों से कहाँ जाना है, सर्वदों से किनारा कर बेहद के वैरागी बनो, हाँ। और आज का स्लोगन क्या था, दुख की लहर से मुक्त होना तो कर्मयोगी बनकर हर कर्म को, और कल का स्लोगन क्या था, संसार के सबसे बड़ा बल कौन सा है, पवित्रता का बल है। परसों का क्या था, क्या मुसीबत आ गई सिर के ऊपर है ये मुसीबत तो मोह लेनी लेनी है, क्या था, आप शांत स्थिति में से तो क्रोधी आत्मा भी शांत हो जाए। तो ऐसे ना मन को पीछे 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 लेते जाना है, भटकाने की अगर आदत है ही है तो ऐसे भटकाना मन को पीछे 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 लेते जाना है। ओम शांति।
चाह।